राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 अगस्त 1992 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वारा मथाड़िया में हुआ। राम
प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रै गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतभुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं दाय देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीतिदाभात् पीताम्बरानुरबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ति गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णकमले नारायण 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 मानव जीवन का बड़ा महात्म्य बताया है। वो महात्म्य शरीर का नहीं है, ये जो स्थूल शरीर है इस स्थूल शरीर की महिमा वो नहीं है, वो महिमा है इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी। मनुष्य में विवेक शक्ति विशेष है, ऐसी पशु पक्षियों में नहीं है। देवताओं में है परंतु वे भोग भूमि के अधिकारी हैं। मनु पुण्यों का भोग करने के लिए, पुण्यों का फल जो सुख है वो भोगने के लिए वहां गए हैं, तो भोग योनि है वो। जैसे 84 लाख योनि ये पापों का फल दुख भोगने के लिए है, ऐसे सुख भोगने के लिए वो है। जैसे नरक दुख भोगने के लिए है, पापों के फल को भोगने के लिए है, वो अगाड़ी उन्नति करने के लिए नहीं है। तो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो मौका मनुष्य में मिला है। तो मनुष्य शरीर में बड़े सावधानी की आवश्यकता है, विशेष ध्यान देना है कि हमारा जीवन नष्ट न हो जाए। तो नष्ट होना अच्छा होना क्या होता है, एक बात है ख्याल में आ गई, आप लोग ध्यान दें। वस्तु कोई खराब और अच्छी नहीं होती है, अच्छा होता है उसका सदुपयोग और बुरा होता है उसका दुरुपयोग। तो मनुष्य शरीर की महिमा कहते हुए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, जहां गुरु जी ने 7 प्रश्न किए उत्तर कांड में, उन 7 प्रश्नों का उत्तर देते हुए भूषणी ने कहा है कि सबसे दुर्लभ मानुष देही। ये पहला प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। तो कहा भाई सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर में वो भाई हो चाहे बहन हो, वो मनुष्य शरीर है, वो दुर्लभ है। और जीव चराचर जाते चर अचर सब जीव मनुष्य शरीर की सराहना करते हैं। भागवत में आया है कि देवता भी मनुष्य शरीर और भारत आदि भारत वर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। यद्यपि देव योनि बड़ी ऊंची है, देवों देवताओं के शरीर बड़े दिव्य होते हैं, हम लोगों के शरीर से देवताओं को दुर्गंधी आती है, जैसे कोई मेले में भिष्टा में काले में सना हुआ सुअर आ जाए और उसको देखने से दुर्गंधी आती है, घृणास्पद दिखता है, ऐसे देवताओं को हम लोगों के शरीर से दुर्गंधी आती है, घृणा होती है, ऐसे दिव्य शरीर है उनके, तेज तत्व की प्रधानता होती है वहां। तेज ये जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, नक्षत्र है, बिजली है, अग्नि है, ये तेज तत्व है, इस तेज तत्व का बना हुआ उनका शरीर होता है। हम लोगों का शरीर पार्थिव है, पृथ्वी तत्व से बना हुआ, तो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये नीचा नीचा है, उस पृथ्वी के विकार से बने हुए सब शरीर है, तेज तत्व बना हुआ है, उनके भोग भी दिव्य होते हैं। यहां अगर आ जाए देवता लोग तो गऊ का घी उनका भक्षण होगा और चीज उनके भक्षण की चीज नहीं होगी। घी तत्व भी अग्नि तत्व माना है, ये तेजस तत्व है घी, इस वास्ते घी से आग बुझती नहीं, बढ़ती है, क्योंकि घी है आग का साथी है, उसको वृद्धि करने वाला है। इस तरह से उनका भोजन भी होगा तो घृत भोजन होगा, नहीं तो अमृत भोजन है उनका। तो ऐसे देवता भी वहां देवलोक में रहते हैं तो वहां भोग बड़े दिव्य होते हैं, उनके मकान है, उनके वृक्ष है, उनका बगीचा है, उनका जल है, उनकी चीजें सब बहुत विलक्षण होती है, बड़ी सुख की सामग्री होती है वहां। उस सुख की सामग्री में रहते हुए भी देवा अपि अस्ति रूप से नित्यम दर्शन कांक्षी है, भगवान के रूप के देखने के आकांक्षित रहते हैं और मनुष्य शरीर पाना भी चाहते हैं। दुर्लभ मानुषो देह, ऐसा बताया भागवत माया कि मानुष देह बड़ा दुर्लभ है। कहते देवताओं का शरीर तो बड़ा दिव्य होता है, उसके साथ वहां नहीं, वहां जन्म नहीं चाहते, जो विवेकी समझदार है वो वहां जन्म नहीं चाहते। वहां क्या होता है कि वहां पुण्यों का क्षय होता है। त्रिविद्यामाम सोमपा पूत पापा यज्ञ दृष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, वे यज्ञों की वो अनुस्थिति करके और देवलोक चाहते हैं, यज्ञ करते हैं या शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, और वहां भी जा करके स्वर्गलोकम विशालम, वो विशाल होता है, ये भूमंडल है, ऊपर ऊपर ये मृत्यु लोक है, उसी ऐसे लोग ऐसे होते होते देवलोक का ऐसा घेरा बड़ा ऊंचा है, ऊंचा यहां ही ऊंचा ऐसा नहीं है, पृथ्वी में जहां देखो वहां से ऊंचा, तो आप अमेरिका में जाकर देखे तो ऊंचा, इंग्लैंड में जाकर देखे तो ऊंचा, यहां से देखे तो ऊंचा, तो पृथ्वी के ऊपर चार तरफ इतना बहुत विशाल है उनका लोक, और विशाल लोक में विशाल ही भोग है, विशाल ही उनकी इंद्रियां होती है, भोगने की शक्ति भी विलक्षण होती है। ऐसे तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर क्षीणे पुण्य, जिन पुण्यों से उनका स्वर्ग लोक मिला है, उनका स्वर्ग लोक है, वे पुण्यमा भोग जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, क्षीण पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में विसंति, वे मृत्यु लोक में आते हैं। तो कहते हैं भाई क्षीण पुण्य हो जाते हैं तो पुण्य सब क्षीण हो जाते हैं ना, अगर सब पुण्य होता हो तो पहले श्लोक में आया है पूत पापा, दो श्लोक है 19-20, तो उन्हों कहते हैं पूत पापा, पाप उनके नष्ट हो गए, और क्षीणे पुण्य तो फिर पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो गए तब मुक्ति हो जानी चाहिए। तो पाप नष्ट कौन से हुए, जो स्वर्ग की प्राप्ति में प्रतिबंधक पाप है, स्वर्ग में नहीं जाने देते वो पाप क्षय हुए हैं। और क्षीणे पुण्य, वो पुण्य कौन सा क्षीण हुआ है, जिन पुण्यों के भोगने के लिए मनुष्य शरीर मिला है वे पुण्य वहां भोग लिए गए हैं। जैसे हम यहाँ गाड़ी में चढ़े तो टिकट हमारा पूरा हो जाता है तो उतर जाते हैं, कारण के उनके पैसे सब भोगे गए, जिन पैसों के कारण से हमें वो टिकट मिला है वे पुण्य सभी भोगने पर फिर वहां से उतरना ही पड़ता है, ऐसे वहां टिकट खत्म होने पर उनको आना पड़ता। तो स्वर्ग लोक के प्रतिबंधक पापों का नाश और वहां भोग करने से उन पुण्यों का नाश ये होता है, पाप पुण्य नष्ट नहीं होते, संचित पाप अनंत पड़े हुए हैं वे बाकी रहते हैं। संचित पापों में से प्रारब्ध पाप पुण्य बनते हैं, पाप पुण्य प्रारब्ध पुण्य देने के लिए जो सुख भोग देने के लिए उद्योग होते हैं उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। थोड़ा सा कर्मों का विषय भी सुन ले, बड़ा विचित्र विषय है कर्मों का। गीता ने में गहना कर्मणो गति कवियो प्यत्र मोहिता, कर्मों के विषय में बड़ी गहरी बात है, इसका स्पष्ट विवेचन बहुत कम मिलता है, पुस्तकों में भी कम मिलता है, व्याख्यान में सुनने करने में भी बहुत कम आता है। तो थोड़ी सी बात कहते हैं, मनुष्य जो अभी कर रहा है अच्छा और मंदा काम कर रहा है, वो अच्छा करते उसे पुण्य बनता है, मंदा काम करते हैं उसे पाप बनता है। तो पाप और पुण्य दोनों अलग अलग जमा होते हैं, वो जमा हुए पाप पुण्य को संचित कर्म कहते हैं। पुण्य पाप दोनों कर्म है, वो कर्मों का संचय होता है खजाना, जैसे हो ऐसे खजाना होता है गठा, उसको संचित कर्म कहते हैं। उन संचित कर्मों में से जिन कर्मों को लेकर के मनुष्य शरीर मिला वो प्रार्थ कर्म है, तो वो शरीर मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, ये शरीर मिलता है, ऐसे देवताओं का शरीर मिलता है, तो वो प्रारब्ध बनता है, उस प्रारब्ध के फल भोग के लिए वो शरीर मिलता है। और शरीर से किए जाए जो कर्म अभी शुभ और अशुभ, इन शुभ और अशुभ कर्मों को क्रियमाण कर्म कहते, क्रियमाण किए हुए कर्म, और वे कर्म जो पुण्य पाप होते हैं जो संचित होते हैं वो संचित कर्म, और उनमें से जो शरीर की प्राप्ति के लिए कर्म फल देने के उन्मुख हो जाते हैं उन फलोन्मुख कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों से शरीर मिलता है, शरीरों में मनुष्य शरीर के द्वारा क्रियमाण कर्म बनते हैं, पशु पक्षियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, भूत प्रेतों के द्वारा नए कर्म बनते नहीं है, वो कर्मों का फल भोग होता है वहां पर। जैसे खेत में जाकर कमाते हैं, घर में बैठकर खाते हैं, ऐसे ही ये मनुष्य शरीर है, इदं शरीरं कौन्तेय, खेत में ये खेत है, यहाँ उपज होती है, ये उपजाऊ खेत है, इनमें बड़ी उपज होती है, बढ़िया जहाँ खेत होता है उसमें अच्छा दाना डाला जाए तो अच्छे वृक्ष भी बड़े पुष्ट होते हैं और वो कांटों वाले दूसरे वृक्ष भी बोए जाए तो वे भी बड़े बड़े कांटों वाले होते हैं, पृथ्वी उनको भी बल दे देती है तो बढ़िया खेत होता है, उसमें जो बीज वो बढ़िया होते हैं। ऐसे इस मनुष्य शरीर में पुण्य भी बहुत बढ़िया होते हैं और पाप भी बड़ा भयंकर होता है। खेत है ना, बढ़िया उपजाऊ खेत है ये, दूसरे खेत जब वो जंगल है, भूमि है, अपने मारवाड़ में अड़ावा है, अड़ावा ये तो है खेत, वो अड़ावा है कोरा, उसमें कोई पैदा नहीं होती, इसलिए से दूसरे शरीर है। तो इस शरीर को प्राप्त करके बड़ी सावधानी रहनी चाहिए। यहाँ पाप और पुण्य भोगे जाते हैं ये भी बात है, परंतु वास्तव में एक मार्मिक बात बताता हूं जिसका वर्णन बहुत थोड़ी पुस्तकों में आया है, मेरे को तो बहुत कम जगह मिला है, वो बताता हूँ आपको। ये सुख दुख जो यहाँ भोगते हैं, बुखार आ गया, कभी बुखार दूर हो गया, कभी नफा हो गया, कभी नुकसान हो गया, कभी किसी बेटे के बेटा हो गया, जन्म हो गया, किसी घर में मृत्यु हो गई, ऐसे जो सुख दुखदायी घटना घटती है ये प्रारब्ध का फल मानते हैं और वह है भी सच्ची बात, परंतु मनुष्य शरीर वो सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य शरीर में भी प्रारब्ध के अनुसार सुखदायी परिस्थिति और दुखदायी परिस्थिति आती है, परंतु सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति भोग के लिए नहीं आती है, ये साधन सामग्री है। सुखदायी परिस्थिति में भी भगवत प्राप्ति का साधन होता है और दुखदायी परिस्थिति में भी भगवान की प्राप्ति का साधन होता है। तो यहाँ सुखदायी परिस्थिति भी साधन सामग्री है और दुखदायी परिस्थिति भी साधन सामग्री है, ये बात बहुत कम जगह मेरे को पढ़ने को मिली है, ज्यादा जगह नहीं मिलती है। तो यहाँ भोग जोनी नहीं है और जो नहीं समझते हैं उनके लिए पशु पक्षी की तरह ये भोग जोनी भोगने के लिए है। शुकर कुकर ऊंट खर बड़ पशुवन में चार, तुलसी हरि की भगत बिन ऐसे ही नर नार। तो भजन नहीं करते, ध्यान नहीं देते, उनके लिए पशुओं की तरह ही सुख दुख भोगते, परंतु ये भोग योनी नहीं है, ये कर्म योनी है। जो 84 लाख योनी में भटकना ही चाहते हैं उनके लिए कर्म योनी है, और सावधान आदमी हो जाए तो ये साधन योनी है, साधन करने का अवसर है। इस एक शरीर में अनंत जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और मुक्त हो जाता है, कल्याण की प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, सब कर्मों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। ऐसा एक सुंदर ये मानव शरीर है, वो चाहे किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी धर्म में हो, किसी के क्यों न हो, सब पापों का संपूर्ण पापों का नाश करके परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जिन कर्मों से ऊंचा उठ जाता है वहां कर्म फिर पुण्य पाप लागू नहीं होते, ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए ये मानव शरीर है। विचरताम को विधि को निषेधा, उनके लिए वो निश्चयगुण हो जाए, त्रिगुण विषय निश्चयगुण जो भगवान जो ना वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, जान लेते हैं, तो उनके पुण्य और पाप पैदा नहीं होते हैं। पुराने कर्मों के अनुसार सुखदायी दुखदायी परिस्थिति तो उनके आती है, परंतु उनकी क्रिया से पुण्य और पाप जो फलदायक है वो नहीं बनते हैं। इस वास्ते कर्मण्य कर्म यह पशी न कर्म ही सकर्म ये सर्वरम्भा, सब आरंभ जितने गए वो काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि से उनके कर्म दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, कर्म फल देने के उन्मुख नहीं रहते। भागवत में आया है भर्जिता कुशिता धाना प्रायो बीजाए नेश्यते। जितने ये बीज है दाने हैं, गेहूं हो कुछ भी हो, गेहूं हो बाजरा हो जौ हो चना हो ज्वार हो, ये दाने जो अंकुर देने वाले हैं उनको उबाल लिए जाए तो फिर ये अंकुर नहीं देते, इनको भूंज लिए जाए तो ये अंकुर नहीं देते। खाने में काम आते हैं परंतु खेती में काम नहीं आते। ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म दग्ध हो जाते हैं, वे उनकी मुक्ति में आनंद में उनके लिए और दुनिया के लिए काम तो ज्यादा आ जाते हैं वो, परंतु वो अगर ही अंकुर देने के नहीं रहते, अगर ही जन्मारंभक नहीं होते, वे दग्ध कर्मा हो जाते हैं पुरुष, तो वो जल जाता है। तो वो जलने के लिए यहाँ जो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है वो साधन है, सुखदायी परिस्थिति भी साधन है और दुखदायी परिस्थिति भी साधन सामग्री है। इस बार शरीर की महिमा बहुत बढ़ाई गई है, इनमें ऐसा नहीं है कि ये पशु पक्षियों की तरह ही खो देना है, विशेष सावधान रहना है। ये एक साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, साधनों का तो ये धाम है और मुक्ति का ये दरवाजा है, यहाँ मुक्ति चला जाए दरवाजा खुल जाता है, मुक्ति का द्वार है। द्वार माहो महत संगम, द्वार माहो विमुक्ते और तमो द्वारम योषिता में संग संगम, सत्संग का अवसर मिल जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृत मोक्ष द्वार खुल गया। मानो मनुष्य शरीर है वो मोक्ष का दरवाजा है और सत्संग हो तो मोक्ष दरवाजा खुल जाता है, अब उसमें जाना चाहे तो मुक्ति हो सकती है। ऐसा ये मानव शरीर जिसमें मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है और मुक्ति की सामग्री पूरी मिल जाती है, पूरी नहीं बहुत ज्यादा सामग्री है। यहाँ उम्र जितनी मिली है, चार बात मैंने बताई थी, एक तो उम्र है अपनी और वो एक है समझ है ज्ञान मन बुद्धि है समझ है और एक समय है एक सामग्री है। समझ सामग्री समय और शक्ति, ये चार चीज है। इसमें सामर्थ्य है काम करने की, समर्थता योग्यता बल बुद्धि आदि काम करने की, तो सामर्थ्य और सामग्री शरीर आदि पदार्थ आदि ये सामग्री है और मनुष्य शरीर का ये समय है। तो ये सामग्री है समय है सामग्री है समय है और समझ है और शक्ति है, इनका सदुपयोग करने से मुक्ति हो जाती है। तो अब बात बताऊं, पहले चल रहा था प्रसंग, तो समय का सदुपयोग करने से सामग्री का और शक्ति का सदुपयोग करने से कल्याण हो जाता है और दुरुपयोग करने से पतन हो जाता है। तो मनुष्य शरीर की महिमा जहां वर्णन आई है, कालभूषण जी ने कहा है, वहां एक बात विशेष ध्यान देने की है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी ज्ञान विराग भक्ति सुदेनी। ये मानव शरीर कैसा है तो वहां बताई कि नरक स्वर्ग अपवर्ग और ज्ञान विराग और भक्ति, ये छह बातें बताई। वो नरक के अंतर्गत 84 लाख दुनिया है, ऐसे सात बातें हैं, सातों दरवाजे यहां खुले रहते हैं। तो उसमें नरक भी है, वो मनुष्य शरीर बड़ा सुंदर है, इसको लेकर नरकों में जा सकते हैं, नरकों का दरवाजा भी खुला है, स्वर्ग का दरवाजा भी खुला है, स्वर्ग नरक अपवर्ग मुक्ति का दरवाजा भी खुला है, तत्व ज्ञान का दरवाजा भी खुला है, वैराग्य दरवाजा भी खुला है, भगवान की भक्ति का दरवाजा भी खुला है, और नरकों के साथ साथ योनि विशेष नरक और स्थान विशेष नरक। तो कीट पतंग पशु पक्षी भाषा बिच्छू गोईरा आदि बने, ये नार की जूनी है, योनि विशेष नरक है। और वहाँ लाला भक्त साल में आदन अशी पत्र कुंभी पाक ये आदि वहाँ नरक है, वे कुंड है नरकों की, वो स्थान विशेष नरक है, ये योनि विशेष नरक है। तो ये सात चीजें हैं, सातों जगह ये मनुष्य जा सकता है, इतना स्वतंत्र है। वस्तु सांप भी बन जाएगा, कुत्ता भी बन जाएगा, और गाय भैंस भेड़ बकरी भी बन जाएगा, और नरकों के कुंडों में भी जा सकता है, महान पाप करके अन्याय करके नरकों कुंडों में जा सकता है, और शुभ कर्म करके स्वर्ग में जा सकता है, जिसका भी वर्णन आया कि वहाँ पुण्य क्षीण होने पीछे मृत्यु लोग में आता है, ऐसे स्वर्ग में जा सकता है, यहाँ वैराग्य प्राप्त कर सकता है, यहाँ वैराग्य प्राप्त करने का दरवाजा भी खुला है। मानव शरीर की बड़ी महिमा क्यों गाई गई है कि इसमें बड़ा भारी अपना कल्याण करने का बड़ा सुंदर अवसर है, और जितनी उम्र मिली है उसके थोड़े अंश में तत्व ज्ञान हो सकता है, भगवत प्राप्ति हो सकती है, उम्र बहुत है। उस बहुत सी बात बताने के लिए एक बात कहता हूं कि ये आरंभ से परमात्मा की प्राप्ति तक ये 5 बार 7 बार 10 बार प्राप्त कर ले, इतना बड़ा समय मिला है। यद्यपि एक बार प्राप्ति करने पर 2 बार काम नहीं पड़ता, परंतु समय इतना भगवान ने दिया है, खुला समय थोड़ा नहीं दिया है, कैसे उम्र 20-25 वर्ष की, 25 वर्ष में हो सकता है, बहुत थोड़ी उम्र में शंकराचार्य महाराज ने काम किया है, ज्ञानेश्वर महाराज थोड़ी अवस्था में बहुत बड़ा काम कर गए हैं, थोड़ी थोड़ी अवस्था थी उन महात्माओं की तो उसमें काम कर गए, तो थोड़ी अवस्था भी पूरी अवस्था है, ज्यादा अवस्था भी पूरी अवस्था है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत अवस्था है, ज्यादा समय मिला है, ज्यादा सामग्री मिली है, ज्यादा समय मिला है, और ज्यादा ही समझ मिली है, बुद्धि भी कम नहीं मिली है, योग्यता कम नहीं मिली है। परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता सबको है, वे पढ़े लिखे को भी, अपढ़ को भी है, महान मूर्ख को भी है, और आपको क्या बतावे, पापी से पापी भी अपना कल्याण कर सकता है, और पुण्यात्मा से पुण्यात्मा भी अपना कल्याण कर सकता है, और साधारण साधारण प्राणी भी अपना कल्याण कर सकता है, ऐसा यहाँ पर दरवाजा खुला है। मानव शरीर में ज्ञान प्राप्ति के लिए अभिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतवा, संपूर्ण पापियों से अत्यंत पापी हो वही ज्ञान प्रवेश नहीं, वह ज्ञान रूपी नौका से पापों को चल जाएगा, ज्ञान रूपी नौका से, और चल जाएगा नहीं इसे धान से समृद्ध हो, महान दहती हुई आग काट को भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि वो संचित हो, प्राप्त हो, क्रियमान हो, कोई कर्म हो, सर्व कर्म है भस्मसात करते, भस्मसात करते, भस्मसात अर्थ है अत्यंत भस्म कर देती है, सर्वथा पाप सब मिट जाते हैं। विभाषा साथी कास्तन्य अर्थ में सात होता, साथी प्रत्यय होता है तद्धित में, तो ये संपूर्ण पापों को भस्म कर दे, ऐसी शक्ति ज्ञान में है। कैसे कृत्य कैसे को काफी चेदसी पापे भय सर्वे भय पाप कृतमा, ऐसा पापी हो महान घोर, ऐसे ही भक्ति की प्राप्ति के लिए अभी से सुदुराचार हो, बस दे मां मन निभाग, पापी से पापी अत्यंत दुष्ट कसाई से भी बढ़कर ऐसा पापी हो, उसको भी भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। गीता बड़ी डंके की चोट कह रही है, अधिकारी को प्राप्त हो जाए उसमें तो कहना है क्या, समाधि सत्संपत्ति बयान बैराग्य सरसंति मोक्षता साधन चतुष्ट संपन्न और प्राप्त, इसमें तो कहना ही क्या है, परंतु पापी से पापी को भी ज्ञान हो सकता है, ऐसी भगवत गीता कह रही है। भगवान की भक्ति हरेक को नहीं मिलती, परंतु गीता कहती है पापी से पापी को भी मिल जाती है अगर वो चाहे। केवल चाहना, संसार में धन मिलता है उसमें चाहना भी हो और उद्योग भी करे और प्रारब्ध हो तो धन मिलता है। तीन चीज मिलने से मानो प्रारब्ध ही हो और पुरुषार्थ भी करे और चाहना भी हो, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल चाहना, शुद्ध केवल चाहना, उस केवल चाहना मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है। केवल चाहना मात्र भगवान की भक्ति भगवान दर्शन दे देते हैं। चाहना उत्कट हो, जैसे भगवान अनन्य है, अन्य उसे जोड़ेगा कोई नहीं है, ऐसी अपनी चाहना ऐसी बेजोड़ हो जो दूसरी चाहना कोई है ही नहीं, जीने की भी चाहना नहीं, मान बढ़ाई आराम सुख भोग की शांत और दूर रही, कोई चाहना नहीं है, ऐसे अनन्य चाह हो जाए तो भगवान कहते अनन्य चेता सतम यो मान स्मृत्याम सुलभ। ऐसी अनन्य चाहना के लिए भगवान अपने आप को सुलभ बताते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा ये मानव शरीर है, इसी महिमा कहां तक कही जाए, बड़ी विचित्र महिमा है। वो समय आपको हमारे को मिला हुआ है, इस समय का सदुपयोग किया जाए। सदुपयोग किया जाए तो मुक्ति हो जाए, भक्ति हो जाए, दुरुपयोग किया जाए तो 84 लाख जोनी से प्राप्त हो जाए और कीट पतंग आदि बिच्छू सांप आदि जोनी प्राप्त हो जाए और पाप फिर बाकी रह जाए। 84 लाख भुगतते बीत जात जुग चार, 84 लाख जोड़ी भोगते भोगते चार जुग बीत जाते हैं, इतने पर भी संपूर्ण पापों का नाश नहीं होता। इतना पाप संग्रह एक मनुष्य जन्म में होता, एक मनुष्य जन्म में किए हुए पाप सबके सब नरकों के कुंड सबके सब नीची जोड़ी भोगने पर भी सब पाप नष्ट होते हैं नहीं, ऐसा खेत है उपजाऊ और इसमें करे तो कल्याण हो जाए, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। और भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान का मुकुटमणि बन जाए, ऐसा सुंदर मौका मानव शरीर का है। तो ये क्या है, ये सदुपयोग है, इस शरीर के समय का सदुपयोग किया जाए तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, और दुरुपयोग किया जाए तो महान नरक और अनंत जन्मों तक भोगे तो भी पापों का नाश न हो, इतने पाप कर सकता है ये, इतने पापों को पाते। तो मानव शरीर मिला है तो डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, बड़े सावधान रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। दुर्लभ हो मानसो देह, दुर्लभ है वह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, उसमें भी सत्संग और दुर्लभ है। दुर्लभ स्वयं तत्व, तीन चीज दुर्लभ है शंकराचार्य कहते हैं, मनुष्य शरीर और मुमुक्षुता, अपने मुक्ति की इच्छा, मनुष्य शरीर मिलने पर भी अपना कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा बहुत कम आदमियों को देखने में आती है, यह भी दुर्लभ है। और ये भी कुछ हो जाए तो इस तत्व को जानने वाले महात्माओं का संग महान दुर्लभ है। मत संगम द्वार माहुर विमुक्ते, मुक्ति का खास दरवाजा है। जब महापुरुष संशय तथा भी दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वो जो वैकुंठ भगवान के प्यारे भक्त हैं उनके दर्शन और दुर्लभ है। मनुष्य मिलने पर भी सत्संग का मौका बहुत दुर्लभ मिलता है, ये अवसर बहुत कम मिलता है। कथा आदि ये भी दुर्लभ है, इनमें भी मार्मिक बातों का ज्ञान कराने वाले पुरुष बहुत कम मिलते हैं क्योंकि इतना अभ्यास नहीं है। मनुष्याणाम सहस्र हजारों मनुष्यों में कोई एक यत्न करता है, यत्न करने वाले सिद्ध हो जाए, उन सिद्धों में से कोई एक मेरे को तत्व से जानता है तो वो जानता है वही बता सकता है, नहीं जानता है क्या बतावेगा। तो ऐसे संत महात्मा दुर्लभ है। भागवत आप देखते हो सुनते हो तो आठ में नौ में स्कंदों में आप देखो तो इतिहास भरा है उसका, वो बेटा उसका, वो बेटा उसका, वो बेटा उसने तप किया, उसने जप किया, उसने अनुष्ठान किया, उसने ये किया, उसने ऐसा किया और किया, स्वर्ग के वास्ते किया, भोगों की प्राप्ति के लिए किया, जीने के लिए किया, मरू नहीं इसके लिए किया, परंतु मेरा कल्याण हो जाए ऐसे आदमी बहुत कम है इतिहास में भी। और मनुष्य शरीर ये मिला है कल्याण के लिए, इस वास्ते ये मौका मिल जाए तो मनुष्य को समझना चाहिए कि भगवान की बहुत कृपा हुई है। ये गोस्वामी जी महाराज भी लिखते हैं, जब द्रवे दीन दयानु राघव सब साधु संगति पाइये, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो भगवान विशेष कृपा होते हैं उनको अच्छा संग मिलता है, तो संग मिल जाए तो फिर गफलत नहीं रखनी चाहिए, बहुत सावधान होकर उसका उपयोग करना चाहिए। तो मनुष्य शरीर का उपयोग सदुपयोग किया जाए तो कल्याण हो जाए और इस मनुष्य के शरीर के रहते रहते जीवन मुक्त हो जाए और थोड़े समय में हो जाए। ये एक विलक्षण बात बहुत कम जगह मिलती है, मेरे को संतों के पास मिली है और गीता में मिली है और संतों के पास भी मिली है। तो ऐसी ऐसा मौका है। तो सज्जनों भाइयों, ये मनुष्य शरीर का समय बहुत कीमती है, बड़ा दुर्लभ है, जिसको मिल जाए उसको पता नहीं है। एक अंगुली भी टूट जाए तो पीछे ऐसी ऐसे नहीं बना सकते, से बना सकते हो पर ये तो अलग ही चीज है, ऐसी नहीं बनती। तो एक अंगुली भी नहीं बनती तो मनुष्य का मनुष्य शरीर ये अपने उद्योग से बन जाएगा क्या? अरे बनता है तो मुफ्त मिलता है भगवान की तरफ से, खुला दरबार मुफ्त मिलता है। आज तरह की तरह आजकल की तरह मनुष्य शरीर की बाधा देने वाले महान हत्या करते हैं, महान पाप करते हैं, मनुष्य शरीर में आते हुए प्राणी को रोक देते हैं, वो भी इस हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जन्म लेने वाले हो उनको रोक देते हैं, वो फिर मुसलमानों में ईसाइयों में उधर जन्म लेंगे, उधर रोक नहीं है, खुला जन्म है, इधर रोक देते हैं तो उधर जन्म है। मनुष्य शरीर मनुष्य तो मिलेगा परंतु उधर बनाएगा, कितनी हत्या करते हैं, कितना महापाप करते हैं, जिसकी कोई ठिकाना नहीं है। जीव बिचारा कल्याण के लिए आवे तो कल्याण के लिए जन्म ही नहीं होने देते और संग भी अच्छा नहीं मिलने देते, ऐसा ऐसा अन्याय अभी बड़ा भारी कर रहे हैं। दुख होता है मतलब रोना करें क्या, हमारा बस चलता नहीं। प्रार्थना कर सकते, हाथ जोड़ सकते हैं कि तुम ऐसा अन्याय मत करो, कोई अपना कल्याण करने वाला जीव आ जाए तो कितनी बढ़िया बात है। ये हिंदू धर्म, ये संस्कृति, वैदिक संस्कृति, इसमें जन्म लेना कितनी विलक्षण बात है, उसमें इनको रोक देते हैं, बड़ी बड़ी हत्या होती है। तो मानव शरीर में भी जो ऐसा भारतवर्ष में जन्म बहुत दुर्लभ है, उसमें भी अंतर्वेद में जहाँ गंगा और जमुना दोनों चलती है उसके बीच का स्थान है वो अंतर्वेद कहलाता है, उसमें जन्म जरूर है। और उसके अपेक्षा भी जैसे काशी क्षेत्र है वरुणा और अस्सी, वाराणसी वरुणा और अस्सी दोनों नदियां जाकर गंगा जी मिलती है, बीच का वो क्षेत्र है वाराणसी, वो क्षेत्र मरने के लिए बड़ा दुर्लभ है। काशी मरण मुक्ति है तो मुक्ति का हेतु है, मुक्त दान महिजान ज्ञान खान अगहान कर जहां पर शंभु भगवान सो काशी से यह कसन, क्यों न सेव उनका, वो मुक्ति का सदावर्त है। जैसे अपने कमा करके धनी होते हैं और कहीं मुफ्त में ही सदावर्त मिले तो खा लो भोजन कर लो मुफ्त में ही, ऐसे भगवान शंकर काशी में मुक्ति का क्षेत्र से जग में जिते जड़ जीव जा की अंत समय जम के जबर जोधा खबर लिए करें, जग में जितेग जड़ जीव जाकी अंत समय जम के जबद जोधा खबर लिए करे काशी पति विश्वनाथ वाराणसी वासन की फासन फांसी जमनासन को शासन दिए करे मेरी प्रजा बह के किम पे है कार दंड सास सारे विचार हमेशी ये करें तारक की भनक पिना की अति प्राणन के प्राण के प्यान समय कान में किए करें। तो भगवान शंकर काशी में क्षेत्र खोल दिया कि भाई यहां हमारे उनकी मुक्ति हो जाएगी, इधर मरण नहीं होगा। उस काशी में भी जैसे अंतर्वेद की वृक्षता उसमें काशी में, और काशी में भी केदार खंड एक खंड है, काशी में भी थोड़ा सा वो केदार खंड है, वो और ही तत्काल मुक्ति देने वाला है। केदार खंड में मृत्यु हो जाए, काशी में मुक्ति मरते से मुक्ति होती है, पर काशी में केदार खंड का और विशेष महात्म्य है। एक कहानी याद आ गई, कथा सुनी हुई है मेरी, तो एक अच्छे पंडित थे, बड़े शुद्ध ब्राह्मण, अपने ब्राह्मण कर्म में हरदम रस रहना, बड़े शुद्ध सदाचारी और पंडित थे। तो वे स्नान करके आ रहे थे गंगा जी में, काशी जी में स्नान कर आ रहे हैं। एक महतरनी निकली महाराज, उसको छू गई तो पंडित जी क्रोधित हो गए कि तुम ख्याल नहीं रखती है मेरे को छू दिया कि क्या हो गया, छू गया तो बोली क्या क्या हो गया मेरे को अशुद्ध कर दिया, अब स्नान करना पड़ेगा। कहते पंडित जी आप पोथी पढ़ो, अपने पुस्तक पढ़ी उनको पढ़ कर देखो, तुम्हारी हमारी एक गति है, एक गति, तुम भी काशी मरोगे मैं काशी मरूंगा, कल्याण तुम्हारा होगा हमारे भी होगा, यहाँ ये बात नहीं चलती, आप पुस्तक देखो क्या लिखा है। बात तो ये ठीक है, कोई मरे मंडूक मत्स्या कृमिओ काश्याम त्यक्त्वा शरीरम सीमाप्नुवन्ति, मंडूक मत्स्या हो जाए मेंढक हो और मत्स्या कृमिओ कीड़े ही हो जाए, काशी हम त्यक्त्वा शरीरम शिव अपने शिव को प्राप्त हो जाते, वो काशी क्षेत्र है। पंडित जी को बात बड़ी मर्म की कही, सच्ची बात कही, पड़े हुए थे काशी खंड आता ही है, उसने देखा और मैं देखा काशी बड़ी महिमा, तो देखा तुमने क्या बात ऐसी है, तो कि हम काशी में नहीं रहेंगे, हम अपना कल्याण करेंगे काशी में नहीं, काशी में कोई हिसाब ही नहीं है, चाहे मैत्र मरे चाहे ब्राह्मण मरे, पंडित शुद्ध मरे चाहे अशुद्ध मरे, कोई मरे। तो महाराज वो अपने पोथी पुस्तक लेकर वहां से रवाना हुए, जाएंगे हम बाहर तो काशी नहीं रहेंगे। ख्याल आ गया उस मैत्रणी की कहने से, वो जाने लगे पंडित जी, तो सामने एक वृद्धा माता मिली, गौर वर्ण और सफेद बाल, और माता मिली, नमस्कार पंडित जी महाराज, महाराज कहाँ जा रहे हैं? के भैया हम जा रहे हैं काशी में नहीं रहेंगे। क्यों महाराज, काशी का क्या अपराध हो गया कि काशी में मरे, मैत्र की भी वही गति, ब्राह्मण की भी वही गति, अच्छे आचरण वाले की भी वही गति, बुरा आचरण करे तो काशी में मर जाए तो मुक्ति, ये अलग हिसाब है, हम यहाँ नहीं रह सकते। ठीक हिसाब होना चाहिए शुभ का शुभ कर्मों का। तो महाराज ऐसी बात नहीं है, मुक्ति तो मरे उनकी होती है, परंतु पाप करके मरता है तो उनको दंड भोगना पड़ता है, जमराज के यहाँ दंड नहीं भोगना पड़ता, वो एक भैरव यातना होती है यहाँ, उस भैरव यातना में बड़ा भयंकर दंड होता है, जमराज की जमपुरी में कुंड होते हैं उनसे भी अधिक भयंकर भैरव यातना है, वो पापों के अनुसार वो भोगता करके और फिर उसकी मुक्ति होती है। इस बात सदाचारी सद्गुणी होते हैं अच्छे, तो भैरव यातना नहीं भोगनी पड़ती, उनका कल्याण हो जाता है, इस बात काशी का कोई अपराध नहीं है। तो महाराज काशी का क्या अपराध, क्यों पधारते हो आप वहां पर, अच्छे वो तो ठीक तरह से है, कि माता जी आप कौन है? कि महाराज मैं काशी हूँ, काशी की अधिष्ठात्री देवता। आप जैसे जैसे पंडित इतने सदगुणी सदाचारी चले जाओगे तो हमारी क्या दशा होगी? आप लोगों से तो हमारी पवित्र भूमि है। अच्छा मैया आप दे जाएंगे, पीछे आ गए तो भैरव यात्रा भोगनी पड़ती है। ऐसा नहीं कह सकते बाबा कल्याण हो, कल्याण तो हो जाता है मन दंड बड़ा भारी भारी भोगना पड़ता है। अरे पुण्य होते जिनके पाप होते नहीं वो सीधे मुक्त हो जाते हैं, ऐसी बात है। तो काशी में काशी मरणान मुक्ति, काशी मरण मात्र से मुक्ति हो जाती है। तो भगवान शंकर ने सदाव्रत खोल दिया। कोई दाल भात देता है तो कोई आटा सीधा देता है, कोई कुछ देता है। भगवान शंकर के हमारे यहाँ मुक्ति देते हैं। कोई आ जाए कोई मर जाए, कैसा जीव जंतु वो मर जाओ नहीं। एक बार काम पड़ा तो भी अब गाड़ी में जा रहे हैं तो बीच में टट्टी जाने का काम पड़ तो रेता ले ले। तो किसी कह रही रेता यहाँ पे नहीं लेना। क्यों भाई? काशी का रेता नहीं लेना, काशी में रेता है, उस रेते में कोई जीव जंतु होगा तो काशी छुड़ा दोगे तुम, पाप लगेगा। यहाँ तो मरने से मुक्ति हो जाएगी, उसको काशी छुड़ा दो बेचारों को, ले जाओ रेतिया उठा करके। तो ठीक नहीं, तो भाई ठीक, वहाँ मिट्टी नहीं उठानी चाहिए, काशी क्षेत्र है ये, तो ऐसा काशी क्षेत्र है मुक्ति देने वाला। तो मानव शरीर है, मानव शरीर में भी ब्राह्मण आदि उत्तम शरीर है, उनका कल्याण जैसे गीता ने कहा अभिषेक सुदुराचारो बजदेव मानने भाग, अत्यंत दुराचारी भी बजता है तो उसका कल्याण हो जाता है। और ये भी शु पाप होने या पुराने जन्मों से पापी आते आए हैं, जो इस जन्म में भी पापी योनी हुए, नीच योनी मैत्र आदि योनि में हो गए, अच्छा गीत पशु पक्षी आदि की योनि में हो गए, वे भी मुक्त हो सकते हैं। सबकी सब मुक्ति है। स्त्री हो वेश्या शूद्र, स्त्री हो वेश्य हो शूद्र हो, सब कल्याण। तुम पवित्र ब्राह्मणा पुण्या, पवित्र ब्राह्मणों का तो कहना ही क्या है कि पहले जन्म के भी पुण्यात्मा है, यहाँ भी ब्राह्मण शरीर है, अच्छे काम करते हैं, ऐसे उत्तम शरीर है, उत्तम आचरण है, उत्तम भाव है, उनका तो कहना ही है। तुम ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजक्षत्रिय जन्म में और भक्त है पवित्र है, उनका तो कहना ही क्या है। किम पुनर्ब्राह्मण कहना ही, तो इस शरीर में मानव शरीर प्राप्त हुआ है, जैसे काशी क्षेत्र मुक्ति देने वाला है, ऐसे मनुष्य शरीर भी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जही परलोक समारा। ये मनुष्य शरीर प्राप्त कर जिसने परलोक नहीं सिद्ध किया, परमात्मा तो प्राप्त नहीं किया। तम आरुणे च्युतम विदु, वो कहता है जैसे ऊपर चढ़कर गिर जाए, नीचे बैठा बैठा गिर जाए तो चोट नहीं लगती, और ऊंचा चढ़ता है वहां से गिरता है बड़ी चोट लगती है। तो मनुष्य शरीर में आकर के और नीचा काम करे, परमात्मा की प्राप्ति न करे, तो आरुणच्युत है, बड़ा भारी पतन की तरफ चला जा रहा है। और उसमें भी फिर सत्संग का मौका मिल जाए, मानव शरीर दूर, मानव शरीर में भी सत्संग और अपनी मुक्ति की इच्छा, और फिर महापुरुष संश्रय दुर्लभम श्रेय में भी तथे, तीनों बड़ी भारी दुर्लभ चीज है, तो ऐसी मिल जाए तो लाभ उठा देना चाहिए। मनुष्य के लिए बहुत ही सुंदर मौका मिला है, बड़ा ही सुंदर ऐसा अवसर मिल गया है। तो भाइयों बहनों परमात्मा को रटो, याद करो, प्रार्थना करो कि हे नाथ आप में मन लग जाए, हे नाथ आपको भूलू में, चलते फिरते उठते बैठे राम 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 राम, बड़ा सीधा बड़ा सरल, सुमेरे तो सुलभ सुखद सब काहू, लोक राह पर लोक निबाहू। भगवान के नाम का जप करे तो लोकों में भी लाभ पर लोक में भी कल्याण, ऐसा है। सुमेरे तो सुलभ बड़ा सीधा, और भगवान से प्रार्थना करें, नाम जप हरदम करें, और एक भीतर से प्रार्थना करें, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं आपको भूलू नहीं, आपकी स्मृति बनी रहे, हे नाथ मैं भूलू नहीं। तो हरी स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, ऐसी भगवान की स्मृति करो, भगवान से प्रार्थना करो, मांगो हे नाथ एक बात दो, हम तो सब कर मांगे एक फल राम शरण रसी हो। भरद्वाज महाराज भी वहां जाते हैं प्रयागराज से, क्या मांगते हैं? अर्थन धर्मन काम रुचि गति हो निर्वाण, चार पुरुषार्थ से अर्थ धर्म काम मोक्ष। भरद्वाज कहते हैं अर्थन धर्मन काम, मैं अर्थ नहीं धन नहीं चाहता, धर्म भी नहीं चाहता, नहीं काम भी नहीं, भोग भी मैं नहीं चाहता, और तो क्या गति नहीं चाहूं, निर्वाण निर्वाण गति भी मुक्ति भी नहीं चाहता। तो भी क्या चाहते हो कि जन्म जन्म रति राम पद, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, बस यह वरदान न आन न और नहीं चाहिए हमारे कुछ नहीं, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। तो भगवान की यादगिरी मांगो, अरे भाई बहन कृपा करो ये एक चीज ले लो, भगवान के नाम का जप करते रहो और हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु आपको भूलो नहीं, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, जैसे रामायण है भागवत है आदि आदि ग्रंथों का पठन पाठन करो, और भक्तों के चरित्र जो भक्तों की छोटी छोटी पुस्तकें निकली है, भक्तांक निकला है, ऐसे भक्त चरितांक निकला है, पहले भक्तांक नाम भगवान नामांक भक्तांक, फिर भक्त चरितांक जिसमें भक्तों के चरित्र बहुत है, ऐसी पुस्तक वो पुस्तक आकर छप गई है, बड़ी अच्छी बात है। और एक अनुभवी पुरुषों का इकट्ठा किया हुआ, जब ईश्वर अंक निकला था उस समय में गीता प्रेस से आदमी भेजे गए, जिस उस में जो जीवित संत महात्मा थे उनसे चार चार बातें मांगी, और यह भी मांगा महाराज आपका अनुभव क्या है, आपने जीवन में उस तत्व का अनुभव कैसे किया, वो अनुभव की आप बात बताओ। तो संतों का अनुभव है वो एक पुस्तक है, ईश्वर की सत्ता और महत्ता नाम से वो भी छपी हुई है, आजकल मिलती है नहीं मिलती पता नहीं, उसमें भी बहुत बढ़िया बात है, भक्त चरितांक तो मिलता है ऐसी बात हमने सुनी है। तो ऐसे आप पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ने से अंतकरण शुद्ध होता है निर्मल होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा, मन शुद्ध करने के लिए मन को निर्मल बनाने के लिए भक्तों के चरित्र बहुत बढ़िया है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा, मन शुद्ध करने के लिए। तो भाई सुंदर मौका है इस अंतःकरण को शुद्ध करके उस परमात्मा को प्राप्त करो, ऐसा बड़ा सुंदर अवसर है। तो समय खाली न चला जाए, सत्संग करो, सत्संग में स्वतः लाभ होता है। मेरे लिए ऐसे देखने में आया है और पुस्तकों के पढ़ने से भी मैंने देखा है, और संस्कृत के हिंदी के और संतों की वाणी भी पढ़ने में आई है, एक तो भगवान नाम की और एक सत्संग की, दो की महिमा बहुत आई, बहुत महिमा आई, सत्संग की महिमा और भगवान नाम की महिमा बहुत आई है। हर सब ग्रंथों को विचार करके उनमें देखा तो मैंने ध्यान दिया है ये दो की महिमा है, भगवान नाम की महिमा और संत महात्माओं के संग की उनके सत्संग की महिमा। इसमें भी अगर देखा जाए तो भगवान नाम तो ले सकते हैं पर सत्संग मिलना दुर्लभ होता। और मैं तो एक बात कह दिया करता हूं, आप साधन करके परमात्मा तत्व की प्राप्ति करें तो वो लाभ की बात है, कमा करके धनी बनना है, परंतु सत्संग मिल जाए तो गोद चले जाना है, अरे खोले जाने वाले क्या पढ़ने पड़े, कल कंगदार आज करोड़पति लखपति गोदी बैठ जाए, तो सत्संग है कि ये गोद जाना है, कमाया हुआ धन मिलता है। जिन लोगों ने अनुभव किया है, कितने वर्ष लगे हैं, कितना अध्ययन किया है, कितना चिंतन किया है, कितनी विचारों को बातों को विचार किया है, और हमारे वो घंटा आठ घंटा में कई बातें मिल जाती है, उनके संग मिल जाती है, ये गोद जाना है, खोले चले गए धनवान के, तुमको क्या जोर आवे, कमा कर धन में लगभग कौन पड़ी पड़े दो रहता है, पर सत्संग के द्वारा बहुत विशेष लाभ हो सकता है। तो सत्संग मिल जाए पहले तुम द्वार में योग बोला मत संग द्वार माँ से एक द्वार बताया साधन धाम, उसके द्वारा मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर में भी सत्संग मिल जाए तो द्वार माँ बुद्धि मुक्ति मुक्ति का दरवाजा, दरवाजे में दरवाजा, ये बड़ा सुगम बहुत सरलता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो इसमें सदुपयोग करना है, उन बातों का ठीक तरह से मनन करना है, वैसे अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाना है। सज्जनों डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, तो आपका कल्याण हो जाए, बहुत सुलता से सुगमता से कल्याण हो जाए, ऐसा सुंदर मौका मिला है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, नाम जप करो, सीधा सरल उपाय, सुमिरत सुलभ, सुमिरत सुलभ, सुगंध सबका हो, जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुबर नाम है सबका होगा शीर, भगवान के नाम में सबका शीर है, सबका हौसला लगता है, सबका अधिकार होता है। जैसे आप बैठे हो या क्यों बैठा के बैठेंगे, तेरे बाप की जगह ऐसे कहते हैं, हमारे बाप का नाम है, बताओ कौन मना करे, भगवान का नाम लेते हमारे बाप का नाम है लेंगे, हमारा अधिकार है, कौन मना कर सकता है। ऐसे भगवान के नाम में अधिकार है सबका, छोटा हो बड़ा हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, नीचा हो ऊंचा हो, कोई ज्ञान हो, भगवान का नाम लेने में सब अधिकारी, माँ के बेटा पांच सात हो, वे सबके सब माँ की गोदी में जाने, माँ के चरणों में नमस्कार करने के, गोदी में जाने के सब अधिकारी, किसको माँ मना करेगी बताओ, माँ ही ठहरी। ऐसे भगवत प्राप्ति में सब अधिकारी, कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो जाए भगवान को चाहे सोए। और सत्संग भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, लगा कर ज्ञान का गोता मिला लो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, वो उसमें लाभ ले लो। कथा थाल अर अर्थ अन, कथा है वो तो थाल है, अरे उसको अर्थ करके बताया जाए, अर्थ अन्न, अरे प्रसंग घृत मिला है, उनमें दृष्टान्त आदि के घीत रज वैसी रीत सो चारों जिन जन्म जिमाए, चारों वर्णों से भोजन दे दू, समझती है केवल ब्राह्मण ब्राह्मण सती वेद सूत्र अंत कोई ज्ञान हो, कथा थाल वो अर्थ अन्न प्रसंग घृत मिला है, रज वैसी रीत सो चारों वर्ण जिमाए, सबको सदावर्त कर दू, कैसी बढ़िया बात। तो ऐसा मौका मिल जाए तो भाइयों बहनों असली तरह से तत्व की प्राप्ति करना, अपने तो भगवान के दर्शन करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, तत्व साक्षात करना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, इसमें लगन, केवल लगन, एक लगन, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए, नारायण हरि लगन में यह तपासों सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोग बात, ये सुहात ही नहीं, कोई बात अच्छी लगती नहीं, एक भगवान का भजन, भगवान की बात वो ही अच्छी लगे। एक शिवजी का भक्त हुआ घंटा कर्ण, ऐसे घंटा बांध दो कानों के पास में घंटा, भगवान शंकर की बात सुना तब तो सुना, दूसरी बात करते ऐसे करते टन, दूसरी सुनते ही नहीं, हम एक भगवान की बात ही सुनेंगे, दूसरी सुनेंगे ही नहीं, क्यों सुने दूसरी बात, क्यों कथ करें, सर समय बर्बाद करें। इस तरह से भगवान में प्रेम से लग जाओ, सजना उठते बैठते चलते फिरते हर दो, कैसी उसको सही सुंदर बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, भगवान के नाम लेने से कल्याण हुआ। भूखन भागे पानी आसान भागे अन्न, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन मानव साचे मन, इस दास ने कहा कि भाई भक्ति बिना, जैसे बहुत बड़ी प्यास लगी हुई, बहुत ज्यादा प्यास लगी हमारे को, लोगो साहब ये हलवा है दो सीमो, एक घी तैरा है गर्मा गर्म मारवा, अरे भूखे प्यासे मर रहा हूँ, कैसे बहुत बढ़िया है, अब बढ़िया तो भूखे को है, प्यासे के लिए तो नहीं है, अरे भूखा मर रहा है सा, बहुत शुद्ध गंगा जल ठंडा जल है, अरे आगे काल तो है जो कांप रहे हो ठंडा जल है, भूख लगी है भूख तो भूख न भागे पानी, पानी से भूख नहीं, अतृषान भागे अन्न, मुक्ति नहीं हरिनाम मिली, हम मन उषा से मन, जरा वो तो नाम धरी जय कराओ तो सेवा कीजिए महाराज, आप कृपा करो तो सेवा कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं। कई दिन बालापन गए, कई दिन गया हजार, नारायण ने नामरी मोड़ी पड़ी पछाण, देरी बहुत लग गई महाराज, कई पन बालापन गए, कई दिन गया हजार। अब जो समय रह गया है, अब ये अबला नशा नहीं, अबला नशा जाओ, आज दिन तक गया जो समय गया, अब नहीं जान देंगे, हर दम सावधान रहो। सावधान ही साधना है, सावधान हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, हेर पीत हरिजन करिए पर हरिये दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, सावधान रहो। हरे राम 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 राम, भगवान का नाम लो और अच्छे काम करो, सत्संग मिल जाए तो सज्जनों फिर विशेष लाभ उठाओ। वहां कठिनता सहनी पड़े तो कोई परवाह नहीं है, दुख सह लो, कष्ट सह लो, पर अच्छा सत्संग मिल जाए, पर उसमें रहो, चिपक जाओ और सत्संग करो। सत्संग में बहुत बातें खुलती है, बहुत ज्यादा अध्ययन करने से, पढ़ाई से उतना लाभ इतना ही होता है जितना सत्संग से लाभ होता है। ऐसी बात नारायण 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 राम राम राम।